باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد والصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین یذهب اللہ عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری گفتگو ولایت کے حقیقی مفہوم پر جاری تھی اور آج اس کی دوسری نشست ہے اور ہم نے پچھلے درس میں ولایت کی اہمیت اور اس کے موضوع کی وسعت پر روشنی ڈالی تھی اور آج انشاءاللہ ہم ولایت کے معنی اور اس کی اقسام کو انشاءاللہ مکمل کرنے کی سعی کریں گے۔ ولایت جیسے کہ آپ کو بیان کیا گیا تھا کہ مولا کی حدیث کے مطابق پانچ اسلام کی پانچ بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے جو کہ سب سے زیادہ اہم اور معتبر بنیاد ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ولایت کا موضوع جب سے انسان حضرت آدم کی ابتدا ہوئی وہیں سے ولایت کا موضوع کی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ شیطان نے جب سجدہ کرنے سے انکار کیا تو یعنی اللہ کی ولایت تشریعی سے انکار کیا جو پچھلے درس میں بیان کیا۔ اس کے بعد خداوند متعال نے انبیاء بھیجے اور ہر دور میں لوگ انبیاء کو قبول نہیں کرتے تھے یعنی ولایت اللہ اور ولایت نبی بلکہ غیر اللہ اور انسانوں کی حاکمیت کو اولویت دیا کرتے تھے۔ یہی موضوع پھر جب آخری نبی کے بعد مزید اور زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے کہ جب رسول کے بعد وقت آیا کہ حاکمیت کس کو دی جائے، حکومت کس کو دی جائے، امامت کس کو دی جائے، خلافت کس کو دی جائے، تو وہاں پر بھی اسی ولایت کے موضوع میں اختلاف کی وجہ سے یہ بنیادی اختلاف ہوا۔ کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، پچھلی دفعہ بھی شاید میں نے بیان کیا ہوگا کہ سورہ مائدہ کی 55 آیت اور 56 آیت میں خدا یہی فرماتا ہے کہ انما ولیکم اللہ والرسول، فقط اور فقط تمہارے ولی اللہ ہیں، اس کے رسول ہیں اور وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان لائے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ تو اگر ولی کا معنی یہاں پر جس طرح سے کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ولی کا معنی یہاں پر دوست کے ہیں، محب کے ہیں، تو پھر آیت کو الذین آمنو پہ تمام ہو جانا چاہیے تھا کہ خدا دوست ہے، رسول دوست ہیں اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے دوست ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو آگے جو آیت چلتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ولی خاص معنی میں ہے اور وہ معنی ہے حاکمیت کے، اولویت کے۔ تو یہ موضوع کی اہمیت اتنی ہے کہ جانشین رسول میں بھی یہ لفظ ولایت کے معنی کہاں پر کون سے استعمال ہوتے ہیں اس کی بنا پر مسائل مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو اگر امت اس موقع پر ولایت کو صحیح سے سمجھ جاتی تو شاید یہ اختلاف نہیں ہوتا۔ اور پھر آج کے دور میں جہاں ایک مرجع تقلید نے انقلاب اسلامی کو برپا کیا اور ایک حکومت اسلامی کو تشکیل دیا اور پھر وہاں سے ولایت فقیہ کی گفتگو کا آغاز کیا جو کہ پہلے سے فقہا نے اس پر روشنی ڈالتے آئے تھے، لیکن جب ایک حکومت اسلامی قائم ہو گئی تو پھر اس بحث، اس گفتگو نے ایک اور، اس کی اہمیت کو ایک اور جو ہے وہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کو سمجھنے کی، اس پہ بات کرنے کی، اس پہ گفتگو کرنے کی اور ضرورت ہے۔ ایک گلہ ہے میرا اور ایک मज़ाह में मैं एक जुमला हमेशा कहता हूँ कि विलायत और विलायत फ़कीह ऐसा मौजू है कि उसके मुखालिफीन ने भी उसको नहीं समझा और उसके हामियों ने भी उसको नहीं समझा। एक ऐसा मज़लूम टॉपिक है कि जो विलायत फ़कीह के हामी हैं, ठीक है, वहाँ भी हमें पता चलता है कि अमली तौर पर उन्होंने विलायत के मफहूम पर अमल नहीं किया। और आज जो हमारे माशरे में मसाइल हैं, तंजीमें हैं, शख्सियात हैं, ठीक है, काश कि अगर वो एक वली के जो है उसकी हाकमियत को कबूल कर लेते, सब के सब उनके पास चले जाते और उनसे उनके मुताबिक अहकामात लेते और उनके मुताबिक अमल पैरा होते, तो आज हमारी शियत कहीं की कहीं पहुंच चुकी होती, मुनसजिम होती, एक ताकत होती है, ठीक है। तो आज के पाकिस्तान के शियों के मसाइल भी इस विलायत फ़कीह के मफहूम को सही तौर पर ना समझना और उस पर सही तौर पर अमल ना करने की वजह से हम इस मसाइल से दो चार हैं। हो पिछले हफ्ते जो है हमने इस मौजू की बताया था कि इस मौजू की वसअत कितनी है, और जैसे कि जानशीन रसूल में वली की लफ्ज़ की बहस जो है वो एक बुनियादी अहमियत रखती है, इसी तरीके से फ़िक्ह में हक़ विलायत एक है उमूर हिजबिया, वो उमूर जो कि शारे जो कि खुदा नहीं चाहता कि वो बग़ैर अटेंड किए रह जाएं, ठीक है, जैसे मजनून के मसाइल हैं, बच्चे के मसाइल हैं जो अपने चीज़ों को अगर उसकी जो है वो मिल्कियत में कोई चीज़ आ जाती है और वो उसको संभाल नहीं सकता है, तो शारे ये नहीं कहता कि इसका कुछ नहीं होगा। या मसलन वो ज़मीन है कि जिसका कोई मालिक नहीं है, उस पर भी जो है वो दीन जो है वो हुक्म देता है। तो क्या ये हक़ विलायत, अब ये बहस है फ़िक़्ह में कि क्या उमूर हिजबिया तक विलायत महदूद है या विलायत जो है हुकूमत तक, कजावत तक, सियासत तक, ज़ामत तक जो है वो वसअत रखती है, कि सिर्फ जो है वो उमूर हिजबी से निकल कर और भी इसके बहुत सारे मौजूआत हैं, सियासी और इंतज़ामी उमूर को भी क्या वली संभालेगा, वो उसका हक रखता है या नहीं रखता। इसी तरीके से बताया था कि दीन और सियासत की गुफ्तगू भी इसी से जुड़ी हुई है कि क्या दीन जो है सिर्फ जिसको हम कहते हैं रिचुअल्स तक महदूद है, दीन जो है आपको बताएगा नमाज कैसे पढ़ना है, हज कैसे करना है, रोज़ा कैसे रखना है, क्या दीन हमें ये भी बताएगा कि हुकूमत कैसे करनी है, कजावत कैसे करनी है, ठीक है ना, काजी किस बुनियाद पर फ़ैसले करेगा, तो दीन हमें ये भी बताता है, वरना जो है वो किताब कज़ा नहीं होती फ़िक्ह में, ठीक है, तो जहाँ कजावत बताता है वहाँ हुकूमत करना भी बताता है, ठीक है। तो ये विलायत की बहस दीन और सियासत की बहस से भी जुड़ी हुई है कि जिसमें हम कहते हैं कि हक़ के हाकमियत फ़कत और फ़कत खुदा को है और खुदा ने ये हक़ रसूल को दिया, रसूल ने इमाम को दिया और वहाँ से फिर फुकहा तक ये हक पहुँचा, और फुकहा को ये हक़ जो है क्या सिर्फ दीनी मरजियत तक महदूद है, यानी जैसे हम कहते हैं दीनी उमूर में एक मरजे होना चाहिए, यानी ज़ामत तक, हाकमियत तक ये वसअत रखता है फुकहा की जो है वो विलायत। और फिर आखिरी आपको बताया था विलायत तकवीनी के हवाले से जो बताया था कि एक इंसान कामिल को कहाँ तक तसल्लुत हासिल है, अपने नफ्स पर तसल्लुत बताया गया था, फिर जो है अपने तखय्युलात पर तसल्लुत, अपने बदन पर इख्तियार, खलाए बदन जिसको कहते हैं, या इस कायनात पर भी उसका इख्तियार है और वो इसमें तसरुफ कर सकता है, जिसको हम विलायत तकवीनी कहते हैं। तो इन सब का सम अप हम करेंगे तो ये जो विलायत का मौजू है ये एक लिहाज से जो है वो ज़ाती पहलू रखता है कि इंसान सोचता है मुझ पर किसकी हाकमियत होनी चाहिए, मैं किसकी हाकमियत कबूल करूँ, अल्लाह की हाकमियत करूँ या गैर अल्लाह की हाकमियत कबूल करूँ। ठीक है, ये बहस अनबिया ने अज अव्वल से बताई है कि ये सारे बुत जो हैं ये गैर अल्लाह हैं, तुम पर अल्लाह की हाकमियत नाफिस होनी चाहिए। या इसी तरह ज़ाती लिहाज के अलावा इज्तिमाई पहलू भी रखता है कि हमें एक हुकूमत बनानी है मिलकर, वो हुकूमत कैसी क्या कैसी होनी चाहिए, आया उसमें भी दीन होना चाहिए या दीन नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से ये बहस एक अखलाकी बहस के मुझ पर किसकी हाकमियत होनी चाहिए मेरे इस वजूद पर, तो ये एक सियासी गुफ्तगू भी है, एक अखलाकी पहलू भी रखता है एक सियासी पहलू भी रखता है। अखलाकी पहलू क्या है, इताअत अमीर, जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ मसला क्या है, इताअत वली नहीं है। हम जितने भी नारे लगाएं, जितने भी जो नारे लगाते हैं जो मुखालफीन हैं, दोनों तरफ ऐसी बातें हैं। ठीक है, तो ये एक अखलाकी पहलू रखता है, ये एक सियासी पहलू रखता है कि हम पर हाकिम कौन होना चाहिए। इसी तरह ये एक इरफानी पहलू रखता है कि अगर मुझे सैर व सलूक की मनाजिल तय करने हैं तो क्या इसमें भी मैं अकेला ये सफ़र तय कर सकता हूँ, ये वली खुदा की ज़रूरत है। ये जितने भी तसव्वुफ़ के सिलसिले हैं ये सब में विलायत की गुफ्तगू की जाती है, तो ये जो है इरफानी पहलू भी रखता है अपने अंदर। जिस तरीके से कलामी मौजू है ये विलायत का और एतिकाद से हमारे लिंक रखता है, इसी तरह से ये फिक का भी मौजू है और फुकहा जो है वो उमूर हिजबिया और गैर उमूर में भी इसकी विलायत के बारे में बहस करते हैं। इससे पता लगता है कि ये मौजू बहुत ज़्यादा वसअत रखता है और मुझे लगता है कि हमारी चार नशिस्त से ज़्यादा शायद ये मौजू आगे भी चला जाए। ये डिपेंड करता है कि आप लोग कहाँ तक साथ देते हैं, लेकिन ये कि इस मौजू को सही से शायद मैं अपने तौर पे समझता हूँ कि हमने आप लोगों को सही से नहीं तबीन किया, सही से नहीं समझाया। ठीक है, इसीलिए शायद माशरे में जो है वो हमें वो इताअत वली अम्र जो जैसी होनी चाहिए वैसे हमें नज़र नहीं आती और वहीं से सारे मसाइल जन्म लेते हैं। ठीक है, खूब एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। खूब पिछले हफ्ते जो है वो हमने विलायत के वली के माना, क्योंकि वली के माना बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत रखता है, क्योंकि इसी अगर सही वली का माना विलायत के माना सही से अगर तबीन हो गए तो बहुत सारी मबाहिस हमारी जो है वो क्लियर हो जाती है। तो पिछले हफ्ते सिर्फ आपको लुगवी माना बयान किए गए थे कि किसी भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का इस तरह यके बाद दीगरे आना कि इनके दरमियान कोई ऐसी चीज़ ना आए जो इन में से ना हो, कोई तीसरी चीज़ ना हो। ठीक है, अगर हमने किसी को हाकिम माना है तो अब उसके और हमारे दरमियान कोई तीसरा ऐसा ना हो किसी चीज़ में हम किसी और की हुकूमत मान, किसी को इमाम माना है, किसी को नबी माना है, तो फिर जो है वो कोई और तीसरा इसमें नहीं हो सकता, आपने उसी को फॉलो करना है उसी को। होप तो ये तो लुगवी माना हो गया, लेकिन इस माना में एक चीज़ अहम पोशीदा है, वो है क़ुर्ब, यानी कोई तीसरा ना आए, यानी आप इतने नज़दीक हों उस वली से जिसकी आपने विलायत को कबूल किया है कि कोई तीसरा ना आए। तो इस माना में क़ुर्ब पोशीदा है, नज़दीक होना। ठीक है, और इस माना में तसल्लुत पोशीदा है, सिर्फ नज़दीक होना नहीं है, ये हाथ भी एक दो मिले हुए हैं, इनके दरमियान कोई तीसरा नहीं है, इसको विलायत नहीं कहेंगे। एक तसल्लुत रखता है, एक हाकमियत रखता है, एक औलवियत रखता है, एक हक़े तसर्रुफ रखता है दूसरे पर, इसको कहते हैं विलायत। ठीक है, वला यली एक एक के पीछे दूसरे का आना इस तरीके से कि कोई तीसरा ना हो, और इसमें हाकमियत, औलवियत, तसर्रुफ, कुर्ब के माना पोशीदा है इंशाल्लाह के। अब जितने भी माना इसके हम आपने अरबी में कहते हैं मुश्तकात, यानी एक वर्ड होता है वला, वला यली, अब उससे बहुत सारे डेरिवेटिव्स निकलते हैं, बहुत सारे अल्फाज निकलते हैं, तो वो आपको बता देंगे किस माना में है वो। जैसे वाली कौम, उर्दू में वाली कौम का वाली, तो कौम के वाली यानी कौम के उमूर चलाने में हाकमियत रखने वाला। ये मैं इसीलिए मिसालें बता रहा हूँ ताकि आपको माना सही से समझ में आ जाए। यतीम के लिए हम वली यतीम इस्तेमाल करते हैं, यतीम का वली, ठीक है। तो उसमें भी क्या है कि यतीम के माल और उसके उमूर के तसर्रुफ में सबसे ज़्यादा वो जो है हक रखता है, सही है, उसको कहते हैं यतीम का ये वली है, यानी उसके माल में हक के तसर्रुफ सबसे ज़्यादा ये रखता है, कोई तीसरा नहीं रखता। इसी तरह औकाफ में, वक्फ में मुतवल्ली होता है, जो उसके उमूर को देखता है, जो जो जैसे मस्जिद है, कोई ऐसी वक्फ की भी जगह है तो उसका मुतवल्ली होता है, तो उसको भी मुतवल्ली इसलिए कहते हैं कि वक्फ की जायदाद की देखभाल में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, कोई तीसरा नहीं होता, मुबाशरत होती है उसमें, ठीक। इसी तरह इमाम के मवाली, मौलाई जो हम कहते हैं, मौलाई है ये, मवाली हैं, ठीक है, ठीके? तो इसके भी माना ये है कि इमाम के चाहने वालों में सबसे ज़्यादा कुर्बत, करीब है ये दूसरों से, सभी चाहते हैं लेकिन ये क्या है, मवाली है, ठीक है, ये मौलाई है, यानी ये सबसे ज़्यादा जो है इमाम का चाहने वाला, इससे ज़्यादा कोई चाहने वाला मौजूद नहीं है। इसी तरह वली जो अल्लाह के नामों में से एक नाम है, उसके माना में भी अल-मुतवल्ली ले उमूरिल आलम, यानी आलम उमूर कायनात को चलाने वाला, तदबीर करने वाला, मैनेजमेंट करने वाला, इसलिए अल्लाह के नामों में से एक नाम वली है। हो इसी तरीके से मौला कहते हैं जो ग़ुलाम का मौला होता है, वो भी उस ग़ुलाम के उमूर की तदबीर करता है, इसलिए उसको मौला कहा जाता है। और ये औला भी इसी से निकला है वली से, कि ये भी वलाया से मुश्तक हुआ है, यानी ज़्यादा हकदार, हम कहते हैं ना औला बे तसर्रुफ, यानी ये ज़्यादा हकदार है दूसरों से। तवल्लियल अमल अरबी में कहते हैं, यानी किसी काम को अपने ज़िम्मे लेना, अमल को अपने ज़िम्मे लेने को वली वला कहते हैं। बस इंशाअल्लाह के इसके ये लुगवी माने हमने काफ़ी तफसील के साथ बयान कर दिए हैं। अब आते हैं इस्तिलाही मानों में, कि इस्तिलाही माने इसके बहुत ज़्यादा मुतादिद हैं। दो मस्दर, ज़ाहिर अरबी में एक मस्दर होता है जिससे वर्ड निकलते हैं, तो एक विलायत है, एक वलायत है, यानी वाव पे कसरा है और एक वाव पे फतह है। तो विलायत जो है वो कहते हैं मोहब्बत, नुसरत और इसके मानंद अल्फाज को, ठीक है, जो कि मैंने बताया उस आयत में अहले सुन्नत ये वाला माना इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर यही वलाया वलायत के मस्दर से निकलेगा तो उसके माना वही हैं जो कि इसके असल माना में पोशीदा है, वह है हाकमियत, सरपरस्ती, तसल्लुत और तसर्रुफ वगैरह, ठीक है, अक्सर इसमें इस्तेमाल होता है। हो लेकिन ये दोनों माना विलायत और वलायत जो है जो जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो है वलायत के माना में इस्तेमाल होता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले अब इसमें इसी माना में एक बुनियादी बहस रह गई है, बस वो करके फिर इंशाल्लाह जो है वो हम आगे बढ़ जाएंगे, कि जब एक लफ्ज़ के कई सारे माना होते हैं तो उसमें दो तरह के होते हैं ये, तो एक को कहते हैं मुश्तरक लफ्ज़ी, एक को कहते हैं मुश्तरक मानवी। मुश्तरक लफ्ज़ी क्या होता है, आसान अल्फाजों में समझाता हूँ कि एक वर्ड होता है उसके कई माना होते हैं लेकिन उन माना में आपस में रब्त नहीं होता, ठीक है, उन माना में आपस में कोई रब्त नहीं होता। जैसे फारसी में कहते हैं शीर, ठीक है ना, शीर जो है वो शेर को भी कहते हैं, शीर जो है दूध को भी कहते हैं, और शीर जो है वो नल को भी कहते हैं, लेकिन इन तीनों चीज़ों में कोई मुताबिक कोई मुमासलत नहीं है। शेर में, दूध में और नल में कोई मुमासलत नहीं पाई जाती, इसको कहते हैं मुश्तरक लफ्ज़ी। एक होता है मुश्तरक मानवी कि इसके तमाम अल्फाजों में एक उनसुर वहदत का पाया जाता है, ठीक है। जैसे आजकल जैसे मोबाइल हम बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है ना, मोबाइल के एक माना क्या है, मोबिलिटी, मूव, जो चीज़ मुतहर्रिक हो, सही है। तो हम इस मोबाइल को मोबाइल क्यों कहते हैं, इसको मोबाइल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मुतहर्रिक है, सही। वो जो पुलिस की वैन, उसको भी मोबाइल कहा जाता है, वो क्यों मोबाइल कहते हैं, मोबाइल आ गई, क्योंकि उसमें भी तहर्रुक पाया जाता है। तो जब अल्फाज अपनी माशरे जब वसअत पाता है तो उसमें एक मुमासिलत की वजह से उसको भी ये चीज़ कह दिया जाता है, ठीक है। जैसे लाइट है, सूरज की भी सन लाइट है, ठीक है ना, ये वाली लाइट जो है ये भी लाइट है, ठीक है। इसी तरीके से गाड़ी की जो हेडलाइट है वो भी लाइट है, सही है। इन सब में क्योंकि रोशनी का उनसर पाया जाता है तो हम सूरज की रोशनी को, चांद की रोशनी को, बल्ब की रोशनी को, सबको लाइट कहते हैं। लाइट जला दें, लाइट बुझा दें, ठीक है ना, ठीक है। तो ये जो विलायत का जो मानी, जो इतने सारे हमने मानी बयान किए हैं, इनमें भी एक हद मुश्तरक है, एक चीज़ है जो सब माना में पाई जाती है। और वो क्या है, वही जो मैंने आपको बयान किया कि उसमें एक तसल्लुत, एक औलवियत, ठीक है, एक हाकमियत, एक सरपरस्ती मौजूद है, ठीक है। जो दोस्ती के माना है, दोस्ती में भी यही होता है कि दोस्त का हक ज़्यादा होता है इंसान पर। एक आम इंसान है, एक आपका दोस्त है, ठीक है। तो हम दोस्त को वली इसलिए कहते हैं, चाहने वाले को वली इसलिए कहते हैं कि वो ज़्यादा हक के तसर्रुफ रखता है आपकी चीज़ों पर दूसरों से, सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जब भी हम कुरान में जहाँ जहाँ भी लफ्ज़ विलायत, औलिया अल्लाह, वली अल्लाह, ठीक है, जब भी ये वर्ड यूज़ होगा उसमें हम इसको मद्देनज़र रखेंगे कि इसमें हाकमियत, तसल्लुत, सरपरस्ती, ठीक है, होनी चाहिए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बारे दिगर सलवात पढ़े। तो अब जो है हमें ये समझ में आ गया कि लफ्ज़ वली जहाँ जहाँ भी इस्तेमाल होगा उसमें औलवियत है, तसर्रुफ है, तसल्लुत है, हाकिमियत है। अब हम आगे चलते हैं तो बस याद रखें कि विलायत जो है मुश्तरक मानवी है, ना कि मुश्तरक लफ्ज़ी। अगर आप लोग का मैं इम्तिहान भी लेता तो ये सवाल ज़रूर डालता ताकि आपको जो है वो याद रहे, क्योंकि पढ़ाने के बाद इम्तिहान लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम आते हैं विलायत की अकसाम पर। ये जो मैंने इतने सारे मौजूआत बताए हैं ये इतने सारे मुतअद्दिद इस वजह से हैं कि विलायत की किस्में बहुत सारी हैं। शहीद मुतहरी ने एक किताब लिखी है फ़लसफ़ा विलायत, ठीक है, उन्होंने इब्तदा तो इसके माना से की है लेकिन वो पूरी किताब में सिर्फ विलायत की अकसाम की एक फहरिस्त बयान की है उन्होंने। तो इतनी सारी अकसाम हैं, जब तक के अकसाम नहीं समझेंगे विलायत की तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम किस किस मौजू में बहस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो हमें विलायत की अकसाम को समझना ज़रूरी है। खूब, पहली तकसीम जो है वो है, एक विलायत मादी होती है, एक मानवी होती है। ठीक है, मादी क्या है कि जो जो हमें नज़र आ रही होती है, जैसे हम कहते हैं इंजन और डब्बे। ठीक है, इंजन जो है वो जहाँ जहाँ जल जाता है, डब्बे जो है वो अपने साथ साथ, उसकी औलवियत है इनके ऊपर और वो इसके पीछे पीछे चलते हैं, वला यलीस। ठीक है, लेकिन एक क्या है, एक विलायत मानवी है जो नज़र नहीं आती, मादी नहीं है। हम कहते हैं कि अल्लाह को हम पर हक़ हाकमियत है, या हाकिम वक्त जो हुकूमत चलाता है वो तसल्लुत रखता है, सरपरस्ती रखता है, औलवियत रखता है, वो विलायत मानवी है। हमारी जो असल गुफ्तगू होती है विलायत मानवी में होती है, विलायत मादी से ज़्यादा हमारा सरोकार नहीं है। बस ये पहली तकसीम है। दूसरी तकसीम क्या है, विलायत तकवीनी और विलायत तशरीई। ठीक है, विलायत तकवीनी, एक दफ़ा विलायत, ये जो तसल्लुत है, सरपरस्ती है, ये बिलफेल हो रही होती है, प्रैक्टिकली हो रही होती है। ठीक है, जैसे अल्लाह जो है इस कायनात को चला रहा है तो उसका तसल्लुत है, उसकी हाकिमियत है। ठीक है, प्रैक्टिकली बिलफेल वो इसको चला रहा है। सही, इसको कहते हैं विलायत तकवीनी। विलायत तशरीई क्या है, वो बिलफेल नहीं होती, बिलकुवा होती है, इख्तियारी होती है। अल्लाह कहता है कि तुम चाहो तो मेरी विलायत को इख्तियार करो, तुम चाहो तो मेरे गैर अल्लाह तागूत की विलायत में आ जाओ। इसको कहते हैं विलायत तशरीई, यानी अगर आप ना करना चाहें तो तागूत की विलायत में जाना चाहें आप जा सकते हैं, अल्लाह ने इख्तियार दिया। सही क्या है, वो विलायत तशरीई है, लेकिन वो बिलफेल नहीं है, बिलकुवा है, खुदा ने बताया है, अब आप उसको बिलफेल फेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर प्रैक्टिकली अल्लाह की विलायत, रसूल की विलायत, इमाम की विलायत, फ़कीह की विलायत को कबूल करेंगे तो ये फिर बिलफेल हो जाएगी, लेकिन अगर हम ना चाहें तो हमें इख्तियार है, हम जो है तागूत की विलायत को इख्तियार कर लें आप। ठीक है, तो बस एक विलायत तकवीनी है, एक विलायत तशरीई है, और आगे इसके बारे में गुफ्तगू आती रहेगी इंशाअल्लाह। फिर एक विलायत है हकीकी और एक है एतबारी, यानी एतबारी कहते हैं मजाजी। देखिए चीज़ें होती हैं, एक जैसे एक ने MBBS करके डॉक्टरेट हासिल की है, ठीक है, वो डॉक्टर है, सही है। एक हम किसी मजाक में अपने दोस्तों में से किसी का नाम रख देते हैं प्रोफेसर, ठीक है, डॉक्टर, वो कोई हकीकी माना में प्रोफेसर नहीं है, लेकिन क्योंकि मीन में निकालता है चीज़ों में तो हमने उसको प्रोफेसर का लफ्ज़ दे दिया। ये क्या एतबारी है, मजाजन है, मजाजी तौर पर है। ठीक है, तो एक विलायत क्या है, हकीकी है, सही मानों में वही विलायत है, और वो किसकी है, अल्लाह की विलायत। अल्लाह के अलावा जो दूसरी विलायतें वो सारी क्या हैं, गैर हकीकी हैं, एतबारी हैं, यानी हमने उसको तसव्वुर किया है, हकीकत में वो विलायत नहीं रखता। सही, फिरौन की लोगों ने हुकूमत कबूल कर ली, सर ये जितने भी गैर अल्लाह की हुकूमतें, हाकमियतें, अमेरिका की हुकूमत, इसराइल की हुकूमतें कबूल कर ली हैं, ये क्या है, असल में हकीकी मानों में नहीं है, ये ऐसे ही है जैसे बग़ैर किसी पढ़े लिखे शख्स को हम प्रोफेसर कह देते हैं, ऐसे ही हम अपने हाकिम वक्त को हाकिम कहते हैं, सरपरस्त कहते हैं, असल सरपरस्त और हाकिम और मौला कौन है? वो अल्लाह है। अब इसके बारे में कुछ आयतें हैं जो आपको बयान करनी हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बस अल्लाह ने क़ुरान में मुतअद्दिद बार इस मतलब को बयान किया है कि हकीकी मालिक, हकीकी वली, हकीकी हाकिम, हकीकी सरपरस्त फ़कत और फ़कत मैं हूँ। ये तुम जिसको कहते हो वली हाकिम, जिसको बनाते हो अपना सरपरस्त, ये दरवाक़े एतबारी है, मजाजन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह बकरा की 107वीं आयत। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलीन वला नसीरिन, और तुम्हारे लिए अल्लाह के अलावा ना कोई वली है, ना कोई सरपरस्त है, और ना कोई नसीर, ना कोई मददगार। ठीक है। इसी तरह सूरह हज आयत 70 कहाँ से, आयत 78, हुआ मौलाकुम फनेमल मौला व नेमन नसीर, वही तुम्हारा मौला है। बस हकीकी मानों में मौला फ़कत और फ़कत खुदा है। ये जो हम इमाम को, नबी को, वली फ़कीह को, ये सब उसकी तरफ से नॉमिनेट होने के बाद आते हैं। वो उसको इंशाल्लाह बाद में बयान करूँगा कि ये दर तूल है, दर अर्ज नहीं है, हमारी ज़बान में कहते हैं। यानी जब असल हाकिम कौन है? अल्लाह है। अब अल्लाह जिसको कह दे इसके मुताबिक चलो, तो फिर वो भी अल्लाह की तरफ से क्योंकि नॉमिनेट है, तो दरवाके अल्लाह ही हाकिम है। अल्लाह की हकमियत की वजह से हमने नबी की हुकूमत को कबूल किया। फिर नबी जिसको कह दे कि मेरे बाद ये इमाम है, ये वली है, ठीक है, तो वो भी दरवाके अल्लाह की हकमियत है। और फिर आइम्मा जिसको कह दें कि हमारे बाद इनकी विलायत चलेगी, तो फिर वो भी विलायत फ़कीह भी उसी तरीके से वो चलेगी। सूरह मोहम्मद की 11वीं आयत है, अल्लाह मोमिनीन का मौला है और कुफ्फार का कोई मौला नहीं। कुफ्फार का कोई मौला नहीं यानी हकीकी मौला नहीं, एतबारी मौला तो उन्होंने बनाए हुए अपने सरपरस्त और हाकिम। बस हकीकी माना में फ़कत और फ़कत अल्लाह की हाकिमियत और विलायत है। सूरह कहफ आयत 26, उसके सिवा इनका कोई वली नहीं और ना ही वो किसी को अपनी हुकूमत में शरीक करता है। ठीक है। बस अल्लाह ही है कि जो सही मानों में उसका हर चीज़ का हाकिम, वली, सरपरस्त है। और फिर खुदा जिसको बना दे, बस हमको उसको हाकिम तस्लीम करना चाहिए जिसके पास खुदा की तरफ से इजाज़त हो, जवाज़ हो। ठीक है। वरना जो है ये तागूत की हुकूमत होगी, तागूत की तसल्लुत होगी। आखिरी जो विलायत की जो अक्साम हैं वो है मनफी विला और मुस्बत विला। ये शहीद मुतहरी ने अपनी पूरी किताब को इसी से, यानी क़ुरान में कुछ विलायतों का तस्करा है जो नेगेटिव हैं, यानी जो एतबारी जो मैंने आपको बयान किया, जिसको हम बनाते हैं, इंसानों ने जिनको वली कर दिया। ठीक है। और कुछ है मुस्बत वली जिनको अल्लाह ने बनाया है। ठीक है। तो मनफी विला में इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते इस बहस को हम लेकर चलेंगे। मैं इस वक्त अब सिर्फ लिस्ट बयान कर रहा हूँ ताकि अगले हफ्ते आपका जहन बना हुआ हो। मसलन शयातीन का तस्करा है कि ये औलिया हैं, ये वली हैं, लेकिन क्या है? मनफी वली हैं, एतबारी हैं। बस शैतान को लोग अपना वली बना लेते हैं। इसी तरह जिन्नात, जिन के बारे में भी आयत है। यहूद व नसारा, जो आयत है कि यहूद व नसारा तुम्हारे वली नहीं हो सकते। ठीक है। तो ये भी मनफी विला में है। जालिमीन, जालिमों को लोग अपना ولی اور حاکم تسلیم کر لیتے ہیں، اس پر بھی آیات موجود ہیں، اور ظالم حکمران، ٹھیک ہے، اس پر بھی آیات موجود ہیں. بس یہ کیا ہے، چھ طرح کے جو ہیں وہ ولی ہیں کہ جو کہ قرآن میں بیان ہوئے ہیں، جو کہ لوگ جن کو ولی بناتے ہیں. اب مثبت ولا، جن کو اللہ کی طرف سے، اللہ اور اللہ کی طرف سے جو ہیں، وہ دو طرح کے، ایک عام اور خاص ہیں. اس میں پہلے تو جیسے کئی دفعہ تذکرہ کیا کہ اللہ ہے، پھر اس کے بعد رسول، نبی اور پھر امام. اسی طرح مومنین کی بھی ولایت کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے قرآن میں، اور مہاجرین کو بھی ولی خدا اور ولایت کا درجہ دیا گیا ہے، جنہوں نے ہجرت کی تھی. اور اسی طرح اولیاء خدا کا بھی تذکرہ قرآن میں، ایک بہت ہی اہم ترین آیت ہے، انشاءاللہ اس کا بھی جو ہے وہ تذکرہ کریں گے. یہ آخر میں ایک آیت کی تھوڑا سا بیان کر دیں اور پھر آپ کی زحمتوں کو تمام کریں گے انشاءاللہ. یہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے، محمد رسول اللہ، محمد کیا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کون ہے، اللہ کے رسول ہے. والذین معہ، اور وہ لوگ جو کہ رسول کے ساتھ ہیں، رسول کے ساتھ معیت رکھتے ہیں، وہ کیا ہے، اشداء علی الکفار، وہ کیا ہے، کفار پر کیا ہے، شدید ہیں، سخت ہیں. رحما بینہم، اور آپس میں کیا ہے، رحما ہے، آپس میں تراحم کرتے ہیں. تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضواناً. یہ آیت جو ہے کافی لمبی آیت ہے، میں اس کے ترجمہ پڑھتا ہوں اور پھر ہمیں اپنا مطلب بھی اسی میں مل جائے گا. تو محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کی کیا صفت بیان ہو رہی ہے، وہ کفار پر سخت گیر ہیں اور آپس میں مہربان ہیں. ہم لوگ کیا ہیں، ہم برعکس ہیں، غیروں کے ساتھ تو بیٹھ جائیں گے، ان کے ساتھ کانفرنسیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا، ہم اپنے اس میں ہندوؤں کو بھی بلائیں گے، کرسچنوں کو بھی بلائیں گے، تو اہل سنت کو بھی بلائیں گے، تو تمام فرقوں کو بلائیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ترحم کریں گے، اپنے گروپوں کے ساتھ. یہ تو فلاں کا، فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، ان کو برداشت نہیں کر سکتے. قرآن کیا کہہ رہا ہے، محمد اور ان کے ساتھ ساتھی کیا کرتے ہیں، رحما بینہم، کچھ معاف کر دو کسی کو. ہماری کیا، کوئی ایک نقطہ مل جائے کسی تنظیم کا، اوئے ہوئے ہوئے، جو پھر پوسٹیں چلتی ہیں، کسی نے تقریر میں کوئی ایک جملہ، بھائی سلپ آف ٹنگ بھی ہو جاتا ہے، بس یہی، جیسے ہم دھاگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں سے کوئی نقطہ مل جائے، فلاں آغا کا، فلاں آغا کا، فلاں تنظیم کا، تنظیم کے اندر بھی جو گروپ ہے، فلاں گروپ کا، فلاں گروپ کا، وہ نہیں پتہ دشمن کیا کر رہا ہے، ہم سب کو جو ایک ساتھ مار رہا ہے، وہ اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کی کوئی خبر بھی نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. خبر کیا ہے، ہمارا جو اگینسٹ گروپ ہے اس نے کیا بولا. یہ قرآن کی اس کے بالکل خلاف ہے. اچھا، اور کیا کرتے ہیں یہ لوگ، آپ انہیں رکوع سجود میں دیکھتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے فضل اور خوشنودی کے طلبگار ہیں، سجدوں کے اثرات سے ان کے چہروں پر نشان پڑے ہوئے ہیں، इनके यही औसाफ तौरात में भी हैं और इंजील में भी हैं। बस इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूटी रही है, हर दौर में कुछ सच्चे पैरोकार थे नबी के, जिनकी ये अलामतें थी, सिजदों के निशान थे, रुकू किया करते थे, सिजदे किया करते थे। जैसे एक खेती जिसने ज़मीन से अपनी सुई निकाली, फिर इसे मजबूत किया और वो मोटी हो गई, फिर अपने तने पर सीधी खड़ी हो गई और किसानों को खुश करने लगी। कुरान में बहुत सारी मिसालों से चीज़ों को समझाया गया है। अब इतना वक्त नहीं है, काफ़ी आप लोग भी थके हुए लग रहे हैं। ये इस मिसाल पर गौर कीजिएगा कि जिसकी जड़ें मजबूत हैं और फिर वो तनावर आगे बढ़ गई, जिससे खुशहाली होती है और किसानों को खुश करने लगी, ताकि इस तरह कुफार का जी जलाए। जब आप मजबूत होते हैं ना, ये जब मुख्तलिफ तंजीमें, मुख्तलिफ आगायून, ये अगर जब एक जगह बैठते हैं ना, एक जगह नज़र आते हैं, जब सारे उलमा एक साथ एक जगह पर एक कोस पर जमा हो जाते हैं, तो खलबली मचती है वहाँ पर कि सब एक हो जाए। कुफार का जी जलाए, इन में से जो लोग ईमान लाए और आमाले साले बजा लाए, इनसे अल्लाह ने मगफरत और अजर अजीम का वादा किया है। तो जो शायद मिसाल है हमारी, वो ये है, अशिद्दा वलल कुफार रहुमा बैनहुम, ये है मनफी विलायत, जिस पे हमें शिद्दत से दुश्मनी करनी है। लोग इमाम खुमैनी पर, क्योंकि उनके दिन भी चल रहे हैं बरसी के, इमाम खुमैनी पे ये एतराज़ करते थे, इतनी ज़्यादा अमेरिका की इतनी ज़्यादा मुखालफत, थोड़ा सा कम कर लें। इमाम अली को क्या कहते थे, अभी माविया पे आप हल्का हाथ रखें, अभी आप अपनी हुकूमत को मजबूत करें, फिर माविया को बाद में देख लेंगे। ठीक है, शायद हमें वो, हमारे पास वो नज़र नहीं है, वो विलायत नहीं है जिसको हम समझ सकें। इसलिए कहते थे कि अली को अपनी शिद्दत अदालत की वजह से शहीद किया गया। आइए, जो आज पाकिस्तान में हो रहा है, हम तो जो है वो पहले समझते थे हर चीज़ सियासतदान करते हैं, अब लोगों को समझ में आ गई है कि हर चीज़ जो है सियासतदान नहीं करते थे, पीछे कुछ और इदारे थे, सारा कुछ तो वो मैनेज करते थे, वो हैंडल करते थे। लेकिन ये कहानी यहाँ तक नहीं है, ये इनसे ऊपर है, ये इसकी जड़ें इस पाकिस्तान से बाहर हैं। जिस तरह यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट है, कुछ इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, वो नहीं चाहती आप आज़ाद हो जाएं, आपकी आज़ाद फिक्र रखने वाले लोग सियासत में आए, नहीं चाहते वो नहीं चाहते कि आप आज़ादाना गुफ्तगू करें कि ये गलत है ये सही है। भाई अगर कोई फौजी गलती करे तो मैं एतराज़ कर सकता हूँ, जिस तरह सियासतदान पे कर सकता हूँ, जिस तरह जो है वकील पे कर सकता हूँ, जुडिशरी पे कर सकता हूँ, इस तरह जो है फौजी पे भी कर सकता हूँ। वो एक फौजी पर एतराज़ है, ना कि पूरे इदारे पर। नहीं, ऐसा नहीं चाहिए, ऐसी लोग नहीं चाहिए जो एब्सोल्युटली नॉट कह दें, जो दुनिया को चलाते हैं। तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि सारा अब ये सारी फौज है, नहीं, ये फौज के पीछे भी कोई है, उसको देखें। और जितने भी अल्लाह के वली थे, जितने भी विलायत रखने वाले, हकीकी विलायत रखने वाले जब कयाम करते हैं, तो वो सबसे बड़े दुश्मन पर हाथ मारते हैं, उसको यहाँ से पकड़ा। तो हमें भी ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान में जो हो रहा है, ये ठीक है, यहाँ वाले तो हैं ही जिम्मेदार इसके, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, लेकिन इनके पीछे कुछ और है जब इनकी इतनी हिम्मतें हो रही हैं। देखे ना, कोई जुरत इसलिए करता है कि मेरी बैक मजबूत है। तब वो ऐसे हालात पैदा करता है कि हर शख्स परेशान है, पाकिस्तान में कि हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। अदालत वो बरी करती है, बाहर निकलते हैं, फिर पकड़ लेते हैं। फिर अदालत बरी करती है, बाहर निकलते हैं, फिर पकड़ लेते हैं। फिर जब निकलते हैं, सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सब नारे लगाते हैं, वो सही हो गया, अब सही हो गया, वो अब वो मुजरिम नहीं रहा। ये कैसा पाकिस्तान है ये? ये नहीं चल सकता। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमें अपने ऊपर किसकी हाकिमियत को कबूल करना है। गैर अल्लाह की हाकिमियत को कबूल करना है या उनकी हाकिमियत को कबूल करना है कि जो अल्लाह से हमको कनेक्ट कर सकते हैं, रसूल से कनेक्ट कर सकते हैं और इमाम से कनेक्ट कर सकते हैं। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदावंद मुताल से दुआगो हैं कि हमारी इस कलील से इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं, हमारी इबादतों को, हमारे इताअतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं, और इन मफहूम को समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाएं, हमें कुरान की तालीमात से नज़दीक फरमाएं, हमें तकवा इख्तियार करने की तौफीक इनायत फरमाएं, हमारे दुश्मनों को और पाकिस्तान के दुश्मनों को नीस्त नाबूद फरमाएं, इमाम ज़माना को ज़हूर में ताजील फरमाएं, हमें उनके आवान और अंसार में शामिल फरमाएं। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले
मोहम्मद।
कोई सवाल हो तो आप। जी पानी 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 जी।
अगर जिस तरीके से फॉलो फॉलो करने के लिए ग्राफ है, उस ग्राफ के अंदर वसूल करने के बाद आई एम आई तारीख के बाद 19 है, जिस तरीके से सिलसिला चल रहा है और उस तरीके की चेन नीचे तक आती है, उस चेन के अंदर लास्ट के अंदर, अगर लास्ट के अंदर या हम उस प्रोसेस के अंदर जो लोगों का उसके अंदर बना हुआ है, उसके अंदर हम देखेंगे चीन के अंदर में से कोई कड़ी सही नहीं है, कोई कड़ी सही नहीं है या हमें सही नहीं लग रही है, तो उस पर क्या मतलब शरीर तौर पर तो ये है कि मुझे उन्होंने जो हुक्म दिया मैंने उनको मान लिया, मैं
भाई सारा मसला ये है
रोजे मैशर
कि ये हमें हक ही नहीं है कि हम किसी को कहें कि वो सही है कि नहीं है।
मतलब सोचना ही नहीं है।
बात यह है कि ऊपर से चलना है मामला। ये सिर्फ आज गैबत के दौर में नहीं है, आइम्मा के दौर में भी यही होता था। भाई जो कुम में शिया रहते थे, ठीक है, बगदाद में शिया रहते थे, तो वो कैसे चलते थे? जिनको आइम्मा नॉमिनेट करते थे कि तुम फलां इलाके में जाओ, ठीक है, हमारी तरफ से, सही है, तो लोग उनसे मसाइल पूछते थे या वो सवालात लेकर आते थे इमाम के हुजूर में और इमाम से सवालात ले जाके उनको बताते थे, ठीक है। तो नॉमिनेशन जो है वो वहाँ से होगा। अगर जो है जिस वो वली जो हमें ऊपर के सिलसिले तक कनेक्ट कर सके, अगर वो कोई बात गलत भी कह दे, हमें हमें पता है कि या आपकी नज़र में ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, वो कुछ और बोल रहा है, तो क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। मालिक अश्तर के इमाम ने क्या तारीफ़ की? क्या जब मैं उसे कह देता हूँ कदम आगे बढ़ाओ तो उसका एक कदम पीछे नहीं हटता, और जब उसको कह दूँ, सिर्फ यहाँ तक नहीं फरमाया, जब उसको कह दूँ पीछे हट जा, कदम पीछे हटाओ, तो एक कदम आगे नहीं बढ़ता। भाई क्या वो चंद कदम के फासले पे तो रह गए थे ना खैमे के? उस वक्त कहते शायद इमाम को खबर नहीं है, मैंने तो काम तमाम कर दिया, हमेशा के लिए किससे ही तमाम हो जाएगा। हम जीत जाएंगे, फिर बाद में जाके इमाम को मना लेंगे। नहीं, यही तो विलायत नहीं है, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट सरेंडेंस। जो वो कह दे चाहे गलत कह दे, आपका जिम्मा जो है ना वो हुज्जत तमाम है, हुज्जत तमाम। ठीक है कि हमने उसको फॉलो किया, अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो कितनी उसमें दिक्कत करता है, कि जिसको उन्होंने बनाया है तो ऐसी तो नहीं बनाया ना, वो जिसको भी उन्होंने नॉमिनेट कर दिया। सही है, मैं जो है वली फ़कीह के पास जाता हूँ कि आप मुझे बताएं पाकिस्तान में मैंने किसके मुताबिक चलना है, और ये गए भी हैं, हम पूछा भी है, ठीक है ना, उन्होंने बता दिया फलां के मुताबिक चलना, अब मुझे उसके मुताबिक चलना है। अब मैं कहूँ वो तो ये करते हैं, वो तो इस बात में गलत है, वो तो उस बात में गलत है, वो तो इस बात में गलत है, इसका मतलब है कि विलायत को सही फॉलो नहीं किया। तो ये है मसला, हमें जब किसी को उसकी सरपरस्ती मान ली तो फिर जो है उसको फॉलो करना है। हाँ, आप उसको मशवरा दे सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं, लेकिन आखिर में क्या है, इताअत उसी की।
खूब एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले।